गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं श्वेता शर्मा और हम आपका स्वागत करते हैं MGU रेडियो उड़ान में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के मानसरोवर आयुर्वेदा कैंपस में वर्कशॉप चल रही है जिसका टॉपिक है मॉलिकुलर सिस्टमैटिक। तो आज वर्कशॉप का सेकेंड डे है जहाँ पर हम वापस उपस्थित हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अपने कुछ लेक्चर्स देंगे। तो हमारे साथ हैं अभी डॉक्टर रितेश कुमार चौधरी सर, जो कि अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं। तो सर, मैं पूछना चाहूँगी कि मॉलिकुलर डाटा और मॉर्फोलॉजिकल डाटा दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन दोनों में से इफ़ेक्टिव कौन सा है सबसे ज़्यादा?
आपकी दो उंगलियाँ हैं, दोनों में से कौन इम्पॉर्टेंट हैं? तो मैं कहूँगा दोनों एक्चुअली इम्पॉर्टेंट हैं। मॉर्फोलॉजिकल डाटा के बेसिस पे ही हम मॉलिकुलर करते हैं, तो मॉलिकुलर मॉर्फोलॉजिकल डेटा हमें एक आधार प्रदान करता है मॉलिकुलर स्टडी करने के लिए। और जब तक आपके पास मॉलिकुलर स्टडी की डिटेल्स नहीं है, तो आप मॉर्फोलॉजिकल डेटा को कंफर्म नहीं कर सकते कि जो मॉर्फोलॉजी बता रही है वो सही है या नहीं। जैसे मैंने अपने एक प्रेजेंटेशन में बताया था कि दो मेंढक बात कर रहे हैं और उनके टीचर ने बताया है कि आपकी लुक जो है वही सब कुछ नहीं है, आपके DNA में क्या है वो आपकी सही जानकारी देता है। इसलिए पहले मॉर्फोलॉजी और उसके बाद मॉलिकुलर, दोनों सेम लगभग 50-50 इम्पॉर्टेंट है।
साइंस हमने स्टडी की है तो हम सब जानते हैं कि इवोल्यूशंस आते गए हैं, चेंजेस आते गए हैं। तो सबको पता है ह्यूमन बींग्स का कि कैसे चेंजेस आए हैं, कैसे इवोल्यूशंस आए हैं, बट प्लांट्स के बारे में मैक्सिमम लोग अवेयर नहीं हैं। प्लांट्स का ज़्यादा इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होता है लोगों के अंदर कि प्लांट्स में चेंजेस कैसे गए, फैमिलीज कैसे आगे बढ़ी। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अवेयरनेस रिगार्डिंग इवोल्यूशंस ऑफ प्लांट्स क्या हैं और कुछ चीज़ें जिनसे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं इस चीज़ के प्रति।
यह प्रश्न पूछने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पूछा है, सच में ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और सबको, हमारे जो जनता है सबों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि एक छोटा सा प्लांट वो दूसरे प्लांट से एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। और हम इसके बारे में तभी जान सकते हैं जब हमें उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पता हो। और हम अपने लैब में जो भी रिसर्च कर रहे हैं, आजकल ऐसा हो रहा है भारत में कि सारी रिसर्च हमारी लेबोरेटरी तक ही सीमित रह जाती है, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं लैब में वो जनता को भी उसके बारे में बताएं और उनको पता हो कि आखिर प्लांट का इवोल्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्टडी जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं उसमें हम यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पौधा दूसरे पौधे से कैसा जुड़ा है, कैसे जुड़ा हुआ है मॉलिकुलर लेवल पे। जैसे हम सबको पता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बंदर थे, लेकिन क्या आप पौधों के बारे में बता सकते हैं? अगर मैं पूछूंगा कि आम के एंसेस्टर्स कौन थे, नीम के एंसेस्टर्स कौन थे, तो शायद हमारे जो साधारण जनता है उनको ये पता नहीं होगा। अगर हम इस बात को और लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी स्टडी करें, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर AK पांडे सर का, जिन्होंने ये मॉलिकुलर सिस्टमैटिक्स का वर्कशॉप कराया है। और लोगों में चेतना फैलाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ऐसे वर्कशॉप, ऐसी कार्यशालाएँ करें और लोगों में इस बात की जानकारी हो कि पौधों का अध्ययन क्यों ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी DNA लेवल की स्टडी क्यों ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हमें जैसे कुछ ही पौधों की पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक छोटा से छोटा वीड, जो छोटा से छोटा घास उग रहा है आपके कैंपस में, आपको उसकी मेडिसिनल प्लांट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या आपको उसकी जानकारी है? शायद नहीं। तो अगर आप इस तरह की स्टडीज़ करते हैं और इस तरह की अवेयरनेस अगर हम फैलाते हैं, तो आपको उसकी बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है।
सर, वैसे तो बेसिकली आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो सर आप वहाँ से यहाँ वर्कशॉप के लिए आएँ, आपके ओपिनियन में या फिर आपके अकॉर्डिंग यहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम जो है, मींस या फिर यहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह आपने देखा होगा, तो क्या चेंजेस दिखे या फिर क्या कुछ न्यू चीज़ें देखने को मिली आपको यहाँ पे?
बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। मैं अगर अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताऊँ तो मेरा जो बर्थ है वो बिहार का है। मेरी पढ़ाई MSc लेवल तक बिहार से हुई, जहाँ के जो पेड़ पौधे वो बिल्कुल अलग हैं। उसके बाद मुझे मौका मिला नॉर्थ ईस्ट में काम करने का। मैं अरुणाचल प्रदेश में 5.5 साल तक रहा, वहाँ से मैंने अपनी PhD पूरी की, तो वहाँ के पेड़ पौधे को जानने का पूरा मौका मिला। मैंने वहाँ के एक अपर सियांग जिला है वहाँ के फ्लोरा का मैंने सर्वे किया है और वहाँ के ऊपर जो एक किताब जिसे हम फ्लोरा कहते हैं उसके ऊपर भी काम किया है, और वहाँ की वनस्पतियों के बारे में मुझे उस 5-6 सालों के दौरान जानने का मौका मिला। उसके बाद मुझे एक फेलोशिप मिली कोरिया जाने की, तो मैं 3.5 साल तक साउथ कोरिया में था। वहाँ के पौधों की को की मैंने जानकारी इकट्ठा की, वहाँ के पौधों को जाना, और उसी दौरान मैंने वियतनाम के भी पौधों का अध्ययन किया है। करीब 3 साल तक मैंने वियतनाम में एक एक नेचर रिज़र्व है जिसे हुनबा बायोस्फीयर रिजर्व, हुनबा नेचर रिज़र्व कहते हैं, उसके ऊपर भी एक पुस्तक प्रकाशित की थी हम लोगों ने वहाँ के पेड़ पौधों के ऊपर। और वहाँ के जो पेड़ पौधे वो अलग थे, कोरिया के पेड़ पौधे अलग थे, हिमालय के पेड़ पौधे अलग थे, और अभी मैं पिछले 6 साल से पुणे में हूँ जहाँ के पेड़ पौधे बिल्कुल अलग हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में 3 बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं जिन्हें हम बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का उत्तप स्थल कहते हैं, जहाँ आपको ईस्टर्न हिमालय में और वेस्टर्न घाट में और अंडमान में तीनों जगह जो पौधों की डाइवर्सिटी है, उनकी विविधता है, सबसे ज़्यादा मिलती है पूरे भारत में। और फिर इन सभी जगहों के पौधे की विविधता का अध्ययन करने के बाद मुझे आज मौका मिला है भोपाल आने का। कल मुझे थोड़ा टाइम मिला था तो मैं आसपास घूम रहा था और मुझे लगा कि यहाँ का जो वातावरण है अभी पौधों के लिए, जो ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर है, और बहुत ही पॉल्यूशन फ्री लगा मुझे। बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि जो वाइल्ड जो हमारे जर्म प्लाज्म है वो अभी भी वेल कंजर्व्ड है, बहुत अच्छे से संरक्षित है भोपाल में बहुत जगहों पर। और इसकी स्टडी की लेकिन मुझे पता नहीं कि मॉलिकुलर लेवल पर, जहाँ तक मुझे पता है यहाँ की बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है, तो इसकी ज़रूरत मुझे महसूस हुई। और ये बहुत ही अच्छा है कि पांडे सर यहाँ एक ऐसे वर्कशॉप का आयोजन करा रहे हैं, तो लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी और लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करेंगे यहाँ के पौधों की का, उनकी विविधता का और उनके मेडिसिनल इम्पोर्टेंस का। तो मुझे बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है। यहाँ का जो ट्रॉपिकल वेजिटेशन है वो जो सेंट्रल जो गैंगेटिक प्लेन्स है उससे बहुत अलग नहीं है, लेकिन हिमालय से या कोरिया या वियतनाम से वहाँ के पौधे से बहुत अलग है। और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि पॉल्यूशन यहाँ मुझे बहुत बड़ा इशू नहीं लगा कंपेयर टू जो हमारे पुणे और महाराष्ट्र के कुछ बड़े सिटीज़ हैं उनसे अगर आप तुलना करें तो यहाँ पॉल्यूशन बहुत ही कम है। यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
अब आपका और भी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बस एक लास्ट सवाल करूँगी आपसे कि सर आपका एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ पे वर्कशॉप का, मीन्स आपने लेक्चर दिया स्टूडेंट्स को या फिर आपने कुछ न्यू चीज़ें बताई, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था और कुछ न्यू एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आप?
मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सबसे अच्छा मुझे लगा कि मैंने कोशिश की कि सेशन को इंटरएक्टिव बनाया जाए, मींस लोगों का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जब आप एक लेक्चर दे रहे हैं, और लोगों में क्यूरियोसिटी बहुत देखी, बहुत ही जानने की इच्छा है लोगों में, तो जो लोकल्स हैं यहाँ के उनमें बहुत कुछ जानने की इच्छा है। ऑफकोर्स टैलेंट हमारे इंडिया में भरा पड़ा है, मध्य प्रदेश, जबलपुर, सब जगह यहाँ जो हमारे भोपाल में है लोग आइसर है हमारे यहाँ, तो टैलेंट तो भरा पड़ा है, थोड़ी एक्सपोजर की ज़रूरत है और थोड़े ऐसे वर्कशॉप ऐसी कार्यशालाएँ कराते रहने की ज़रूरत है ताकि बाहर के लोग भी यहाँ आएँ और देखें कि यहाँ कैसा रिसर्च हो रहा है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, कितनी उनमें जानने की इच्छा है, कितने टैलेंट भरे पड़े हैं, तो इनको और प्रमोट करने की ज़रूरत है। और बाकी तो बस मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। आप लोगों से भी मिलना हुआ, यहाँ के स्टूडेंट से भी मिलना हुआ, प्रोफेसर्स बहुत एंथुजियास्टिक हैं और बहुत काबिल हैं। पांडे सर ऑलरेडी मेरे गुरु रह चुके हैं, तो वो तो उन्होंने ही मुझे टैक्सोनॉमी की ABC भी सिखाई है, तो उनके बारे में क्या बताना, मैं उन्हें जानता हूँ बहुत लंबे समय से, वो है यहाँ, तो मुझे लगता है यहाँ बहुत ही अच्छा होने वाला है। धन्यवाद।
धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना कीमती समय हमें दिया, और इस सेशन के लिए थैंक यू सो मच सर।